आगे से सूरत यूनुस देखेंगे, मक्की सूरत है, बहुत ही हल्की फुल्की सूरतें हैं, कुरान इसका बुनियादी मौजू है, और ऐसी सूरतों में फ्लो के साथ तर्जुमा पढ़ना सुनना ज़्यादा मज़ा देता है कि इसमें बीच में रुका जाए। 109 आयतें हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। और आपने इस पूरी सूरत में से जहाँ लफ्ज़ कुरान या कुरान से मुतल्लिकात आएंगे उसको नोट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। क्या इन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराइए और जो ईमान ले आए इनको ये खुशखबरी सुनाइए कि इनके रब के पास इनको पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा, ये शख्स तो बिला शुबा सरीख जादूगर है। हाईलाइट कीजिए, यानी आपको इसमें अल्लाह के नबी पर इतने इल्ज़ाम लगते दिखेंगे लेकिन आपने कभी अपनी जान का दिफा नहीं किया, आपने अपनी जात के लिए ना रोका ना रुके ना टोका, आप बेनियाज होते रहे और अल्लाह का काम करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ। इसीलिए बागे अल्लाह ताला की कुछ सिफात, इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फ़ी सित्तति अय्याम, बिला शुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, इसकी इजाज़त के बगैर कोई इसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम इसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? खुद से पूछिए, या कहीं मुझे तो नहीं कहा जा रहा अफला तज़क्करून, तो अल्लाह में नसीहत पकड़ने वालों में शामिल कर दे। इलैही मर्जियुकुम जमीअन, तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ताला ने सच्चा वादा कर रखा है, बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जज़ा दे, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके वास्ते खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा इनके कुफर की वजह से। सिर्फ 4 आयतें गुजरी हैं अभी, आप देख रहे हैं तौहीद, रिसालत और ईमान बिलाखिरा, यही बातें और यही आगे भी मिलती रहेंगी। हुवल्लज़ी जअला शम्सा ज़ियाउन वल क़मरा नूरा, वल्लाह ऐसा है जिसने आफ्ताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और इसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल इनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश रखते हैं। बिलाशुबा रात और दिन के यके बदीगरे आने में और अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमान और ज़मीन में पैदा किया इन सब में इन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। लिकौमी यत्तकून, यहाँ से कायनात पे गौर व फिक्र तदब्बर के साथ साथ तकवा की दावत भी मिल रही है। फिर आगे आप देखिए, मान बिल आखिरा इन्नल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना व रदू बिल हयाति दुनिया, जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं और वो दुनिया भी जिंदगी पर राजी हो गए हैं और इसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल की वजह से दोजख है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बड़ी प्यारी आयत है, जरा सा अपनी थकन को दूर करके इस पे गौर कीजिएगा। यकीनन जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए, यहदीहिम रब्बुहुम बी ईमानिहिम, ये है असल नुक्ता, इनका रब इनको इनके ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा। कहाँ? वो जन्नतें जिनका नाम नहीं, तजरी मिन तख्तिहिम अल अनहार, नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यानी सारी ज़िंदगी अल्लाह से दुआएं करते रहे और मेहनतें करते रहे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते रहे, और आज अल्लाह इनको जन्नत में ले जाएगा। नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, कायम रहेंगी, और वहाँ जाते ही उनकी ज़ुबान पे जो कलाम होगा वो क्या होगा? दावाहुम फ़ीहा सुभानकल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुभान अल्लाह, और इनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और इनकी आखिरी बात क्या होगी? नोट कीजिएगा, वाखिरु दावाहुम अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। क्या पता चला कि बंदा मोमिन के दिल में दुनिया में भी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी बड़ाई होती है। कोई नेमत देखता है तो अपनी नहीं अल्लाह की तारीफ करता है, तो जन्नत में जाकर भी वो ऐसा ही करेगा। और अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक दे कि दुनिया में कोई नेमत मिले तो उसको फौरन अल्लाह की तरफ जोड़ दीजिए। इसके बरक्स कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नास, और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाकई कर दिया करता जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। बस सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं, इनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। और इंसान की थोड़ी दिली, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी बैठे भी खड़े भी। जब हम इससे इसकी तकलीफ को हटा देते हैं तो ऐसा हो जाता है गोया इसने अपनी तकलीफ के लिए जो इसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं था। इन हद से गुजरने वालों के आमाल को इनके लिए सिर्फ खुशनुमा बना दिया गया। यहाँ जरा सा सोचिए, कोई जिंदगी में ऐसी तकलीफ आई कि लगा के नहीं जाएगी, और आपने उस वक्त अल्लाह से बड़े वादे किए, हाय हट जाए, ये कर दूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, और हट गई, और अब फिर आप अल्लाह से बेनियाज हो गए। फौरन तौबा करके वो नियत जो की थी उसको पूरा कीजिए। और इसी तरह से इंसान दिन ब दिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करता जाता है। वलक़द अहलकना अल-क़ुरून, अब यहाँ तारीख की बात है, सबक तारीख के ये भी सूरत में आपको दिखेगा। और तारीख का बड़ा सबक बताऊँ क्या है, कि लोग तारीख से सबक नहीं लेते, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, लेकिन लोग बार बार वही गलतियां करते हैं जो उनसे पिछले कर चुके होते हैं। कैसे, और हमने तुमसे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए, और वह ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं, फिर इसके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुम को जानशीन बना दिया। क्यों, लीनाजुरा कई फता मलून, ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। तुम्हें और आप, हम सब बींग वॉच्ड हैं, हम कैमरों की आंख में हैं, हमें हर वक्त अल्लाह भी देख रहा है, फरिश्ते भी नोट कर रहे हैं कि ये करते क्या हैं। तो अमल की बातें, दावत व तबलीग में मसरूफ किसी दाई को खुशखबरी दीजिए कि इनका साबित कदम रहना सच्चा होने की दलील है। कोई वाज सुनिए जो आपको आखिरत की याद दिला दे, और आजकल तो ये कुरान ही सुनना काफी है। कोई मुसीबत या बीमारी जिससे अल्लाह ने आपको निजात दी हो उसको याद करके दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुरान से रहनुमाई, आखिरत की शिफात किसी जिंदा या मुर्दा से नहीं बल्कि उससे मांगिए जिसकी इजाज़त के बगैर कोई शिफात नहीं कर सकता, यानी अल्लाह ताला। आखिरत को याद रखना है क्योंकि आखिरत को भूल जाना गफलत का पहला मरहला होता है। ईमान रब्बानी हिदायत के हसूल का सबब है, ईमान में इजाफे वाले आमाल करने हैं। गौर व फिक्र के गोशे, अल्लाह ताला तौहीद पर इस्तकामत रखने वालों और अखलास वालों से राजी होता है। मखलूकात की तख्लीक में गौर व फिक्र ईमान में इजाफे का सबब है। इंसान को गौर व फिक्र पर उभारने वाली चीज तकवा है, इसको बढ़ाना है, और अपनी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगाइए क्योंकि ये इंसान का असल सरमाया है। और जो ये कहते हैं ना, मुझे तो अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, तो वो जाकर अपनी अक्ल का टेस्ट करवाए। आप और मैं अल्लाह का मास्टरपीस है, सिर्फ इसको इस्तेमाल करने की देर है। आगे देखिए आयत नंबर 15 से, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान लाइए या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप यूं कह दीजिए, मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तरमीम करूं। जी, अमेंडमेंट्स, दुनिया के कवानीन में अमेंडमेंट्स होती है, ये फलां साल में हुई, ये फलां में, इस कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं होगा, इसका नुक्ता, इसका एक शोशा भी नहीं बदला जाएगा। कल भी यही फरमाइश थी, आज भी लोग कहते हैं इस कुरान की ये आयतें निकाल दे, सूरह तौबा निकाल दे ना फिर ठीक है। अच्छा, वो फलां आए जो है ना, वो फलां जो सूद की है, जरा उसको निकाल दें। अल्लाह कहते हैं ये कोई नए शोशे नहीं है, कल भी थे आज भी हैं। तो अल्लाह के नबी का जो जवाब है उसको आप भी याद कर लीजिए, अगर कभी कोई आपसे ऐसी बात कर दे, और साफ कह दीजिए इन अत्तबिल्ला मा यूहा इलैह, बस मैं तो इसकी पैरवी करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूँ। आप यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता, और اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع فرماتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں استعمال کرتے، یعنی پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نبی کو تم نے دیکھا نہیں بچپن سے جوانی تک، کتنا صاف ستھرا تھا میرا بچپن اور جوانی، کیا میں نے اب اس عمر میں 40 سال کے بعد آ کر کوئی جھوٹی بات کرنی؟ صادق اور امین تو مجھے لوگ جوانی میں کہتے تھے، کیا میں اب جھوٹ بولوں گا؟ اس لیے فرمایا، فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ کون مجرم؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، اعتراضات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا اعتراض برائے اعتراض، سب وہی چل رہے ہیں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، بس تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ آپ نے تو نہیں کبھی اللہ سے ایسا کوئی وعدہ کیا اور بعد میں بھول گئے؟ توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں۔ ہوتا کیا کہ جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سب لوگوں کو ایک جنرل پیغام، بہت اہم آیت سورت کی، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے ہی لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ سرکشیوں کا وبال پڑتا ہے۔ اس آیت کو اپنے کسی خوشی کے موقع پہ یاد کرنا ہے، شادی کا موقع، گھر میں فنکشن، چیزیں، اب خوشی کے نام پہ یہ کرنا وہ کرنا، بغاوت ہے نا، حدوں سے گزر جانا، سرکش ہو جانا، خوشی میں یا غم میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، جسم کی نمائش میں، دکھاوے میں، اسراف، تبذیر۔ تو اس وقت سوچئے گا کہ آج جو گناہ ہونے لگا ہے مجھ سے، کیا اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سکتا ہے بعد میں بیمار ہو جاؤں، پاؤں پھسل جائے، تو اس وقت یاد کیجئے گا کہ میرے کسی گناہ کی یہ سزا تو ضرور ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی وہ رستہ نہ لے جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ اب دنیا کی زندگی کی حقیقت، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء، بس دنیا کی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا، بس ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کہ کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ سوچ سوچ سمجھ، اس پہ غور کیجیے، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ بغیر سوچ کے جینا کیا جینا ہے؟ और जो अल्लाह की तौहीद को पहचानते हुए, रसूल का हक अदा करते हुए, ईमान बिल आखरा को मजबूत करते हुए जिएंगे और अमल साले की भरपूर कोशिश करेंगे, उनके साथ क्या होगा? वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम। और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता है राहे रास पर चलने की तौफीक देता है। दारुस सलाम तक जाने का रास्ता इस्लाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफशुस सलाम, सलाम को आम करो और भूखे को खाना खिलाओ, और रातों को जब लोग सो रहे हों तो उस वक़्त तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यानी तीन कामों के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या होगा कि तुम सलामतियों के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो तदब्बुर और अमल की बातें लोगों को शिर्क से आगाह करें और बताएं कि गैर अल्लाह या मुर्दों से दुआ मांगना भी शिर्क है और उनके बारे में ऐसा अकीदा रखना भी हराम है। लोगों को इज्तमाईयत और एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही की अहमियत बताइए और दूसरों के बारे में गलत सोचना, गलत उनके बारे में कहना, इसकी बुराई का नुकसान बताइए। अल्लाह से किए हुए अहदो पैमान को पूरा करें और अल्लाह ताला से सलामती वाला घर यानी जन्नत मांगिए। आइए दुआ करते हैं, अल्लाह हमें दारुस्सलाम में दाखिल करना सलामतियों के साथ, बग़ैर हिसाब के, बग़ैर अजाब के। कुरान से रहनुमाई अल्लाह ताला की नाफरमानी और इससे बेखौफी दिल के रोग की अलामत है। हमेशा आखरत की फिक्र इंसान को गुनाहों में पड़ने से बचाती है। जुल्म और ज्यादती करने वाले का वबाल उसी पर ही पड़ेगा, इसलिए जुल्म और ज्यादती से बचना है। गौर व फिक्र के नुक्ते, अपने मुफादात और ख्वाहिशात के लिए अहकाम शरीयत को बदलना पकड़ और अजाब का सबब है। अल्लाह ने जन्नत को दारुस्सलाम इसलिए कहा कि ये घर हर किस्म की आफतों, खामी और मुसीबतों से पाक होगा। मजबूरों मजलूम आदमी की दुआ कबूल की जाती है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। गौर व फिक्र से गाफिल शख्स को कुरान की आयात भी फायदा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला गौर व फिक्र की तौफीक दे। आगे आयत 26 से ऑनवर्ड, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने नेकी की है इनके वास्ते खूबी है और मजीद बराह भी, और इनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे, और जिन लोगों ने बुरे काम किए इनकी बदी की सजा इनके बराबर मिलेगी और इन पर जिल्लत छाएगी और इनको अल्लाह से कोई बचा ना सकेगा, गो के इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए। दुनिया में गोरा या काला होना कोई बुरी बात नहीं ना अच्छी बात है, लेकिन क्यामत के दिन काले रंग हसरत और अफसोस और रिग्रेट की अलामत होंगे। ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे, और वो दिन भी काबिले जिक्र है जिस रोज हम इन सब को जमा करेंगे। फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम इनकी आपस में फूट डाल देंगे और इनके शुरका कहेंगे कि क्या तुम हमारी इबादत ना करते थे? बस हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है गवाह के तौर पर कि हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी ना थी। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा, और ये लोग अल्लाह की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब इनके गायब हो जाएंगे। सारे क्यामत के मंजर ऐसे लग रहे हैं मुझे जैसे वहां फिर के आ रही हूँ। एक एक मंजर है, अल्लाह ताला हमारा उस दिन हशर अच्छा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत 30 पे निस पूरा हुआ। अब आगे सवाल उठाकर शोर को बेदार किया जा रहा है। कुल मैयर सुबह को मिनसमा, आप कहिए वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है? क्या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है? और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है? और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है? जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए फिर क्यों नहीं डरते? अफला तत्तकून, फजालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, सो ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया? इसको भी हाईलाइट करें। फमाज़ा बादल हक़ दलाल, यानी आप एक हिदायत का रास्ता छोड़े तो कितने गुमराहियों के रास्ते आपके आगे आ जाएंगे। हमेशा सोच कर हिदायत के रास्ते से एग्जिट लीजिए, फिर कहाँ फेरे जाते हो? इसी तरह आपके रब की ये बात कि ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। आप यूं कहिए, क्या तुम्हारे शुरका में कोई है जो पहली बार पैदा करे और फिर दोबारा भी पैदा करने वाला हो? आप यूं कहिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा। तुम कहाँ फिरे जाते हो? आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में क्या कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो? आप कह दीजिए अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर क्या वो शख्स जो हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तबा के लायक है, या वो शख्स जिसको बताए बगैर खुद ही रास्ता ना सूझे? सवाल कीजिए खुद से। बस तुमको क्या हो गया कि तुम कैसे फैसले कर रहे हो? और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यफ़अलून, ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब की खबर है। दोबारा कुरान का तस्करा। वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर अपने ही से घड़ लिया हो। नबी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, उसको ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे कबल नाजिल हो चुकी हैं, और अहकाम ज़रूरिया की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई बात शक की नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया? आप कह दीजिए कि फिर तुम इसके मिसल एक ही सूरत लाओ, और जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ऐसी चीज़ को जुटलाने लगे जिसको अपने हाथ इल्मी में नहीं लाए, और हनूज इनको इसका आखिरी नतीजा नहीं मिला। वलम्मा यातिहिम तावीलहू, यानी अभी एंड सामने नहीं आया। जो लोग इनसे पहले हुए इसी तरह उन्होंने भी छुटलाया था, सो देख लीजिए इन जालिमों का अंजाम क्या हुआ। वमिनहु मन युमिनु बिही, और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे, और बाज़ ऐसे हैं कि इस पर ईमान न लाएंगे। वरब्बुका अअलमु बिल मुफ्सिदीन, और आपका रब फसाद करने वालों को खूब जानता है। और दिल दुखता तो होगा, इंसान तो थे, बशर तो थे, इसीलिए अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं। वइन कज़्ज़बू का फ़क़ुल्ली अमली वलकुम अमलुकुम, और अगर आपको झुटलाते रहें तो आप ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं, क्या बहरों को सुनाते हैं गो कि इनको समझ भी ना हो, यानी सिर्फ इनके कानों तक आवाज़ जाती है, ये सीखने या समझने या अमल करने की नीयत से नहीं सुनते, बल्कि एतराज़ात करते थे। आइए ज़रा तदब्बुर और अमल। हराम चीज़ें देखने से बचें और नवाफिल का अहतमाम करें ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह के चेहरे का दीदार कर सकें। सोचिए जिन आंखों से दुनिया में हराम देखेंगे, क्या अल्लाह उन आंखों का अपना दीदार करवाएगा? अपने घरेलू उमूर के इंतजाम में आने वाली दुश्वारियों को याद करें और सोचिए कि अल्लाह तआला कैसे पूरी कायनात का निज़ाम चलाता है, मुझसे एक छोटा सा घर नहीं चलता। फिर इससे अल्लाह की बड़ाई को महसूस कीजिए। गुनाहों की तरफ रागिब करने वालों की सहबत छोड़कर नेकियों की तरफ बुलाने वालों को अपनाइए। कुरान पाक से रहनुमाई। गुनाह अपने करने वाले पर बुरे असरात डालता है, इसलिए गुनाहों से बचिए। यकीनी इल्म के बगैर किसी चीज़ को कबूल ना करें और हक बात को ना ठुकराइए। दुनिया में आप झूठ बोलकर बाज़ सूरत हाल में छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आखिरत में क्या होगा? गौर व फिक्र कीजिए। अहसन दर्जे से अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ इनाम में होंगी। अकायद के इल्म में हक और बातिल के बीच कोई दरमियानी दर्जा नहीं होता। बगैर दलील के बाप दादा और उलमा की अंधी तकलीद नहीं करनी। दिल लगी और गलती और कमजोरी की तलाश की नीयत से कुरान सुनने वाला खैर हासिल नहीं कर सकता। यात्री के बंदे को वही मिलता है जो वो ढूंढता है। आमतौर पर घरों में कोई ना कोई एक ऐसा किरदार होता है जिसके खाने में से या कभी बाल निकल आता है, कभी सुसरी निकल आती, कभी कुछ और। वो ढूंढ रहा होता है इसलिए निकल आती है। जो गलतियां चुनेगा उसको मिलेगी। और हदीस लिख लीजिए यहाँ कि जो लोगों के ऐप ढूंढेगा अल्लाह उसके ऐपों के पीछे लोगों को लगा देगा, हद तक उसको उसके घर में रुसवा कर देगा। तो ज़रा चेक कीजिए कि अपने घर वालों की नज़र में आप कैसे हैं। आयत नंबर 43। वमिनहुम मन यंज़ुरु इलैक, और इनमें से बाज ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं? वो इनको बसीरत भी ना हो, ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन खुद ही लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और इनको वो दिन याद दिलाइए जिनमें अल्लाह इनको अपने हजूर जमा करेगा, तो इनको ऐसा महसूस होगा। इसको आप नोट करिएगा, लम यलबसु इल्ला साअतम मिनन नहार, के दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे हों। कद खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ा इल्ला वमा कानू मुहतदीन, बाकी खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुटलाया और वो हिदायत को पाने वाले न थे। जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला दें या हम आपको वफात दे दें, बस हमारे पास तो इनको आना ही है। इसमें वो कामयाबियां जो सहाबा को मिली आपके बाद उसका भी तस्करा, और जो आजमाइशें आपके बाद आई उसका भी तस्करा। पता क्या चला कि लीडर्स की जिंदगी तक ही चीजें नहीं रहती, आगे भी फतह और नुसरत और कामयाबी और नाकामी का सिलसिला बाकी रहता है। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी को भी दुनिया से जाना था। फिर अल्लाह तआला इन सब के अफाल पर गवाह है और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। बस जब इनका वो रसूल आ चुकता है, इनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और इन पर जुल्म नहीं किया जाता। वो यकूलू नमता हाजल वादु इन कुन तुम सादिकीन, और ये लोग कहते हैं वो वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। यानी बेयकीनी की भी कोई हद होती है। आप फरमा दीजिए, मैं अपनी जात के लिए तो किसी नफे का और किसी जरर का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है, जब इनका वो मुअय्यन वक्त आ पहुंचते थे, घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे से रख सकते हैं। यानी हर चीज अपने वक्त पे आएगी। कुला राई तुम इन अता को मजाबू बयातन औ नहारन, आप फरमा दीजिए कि ये तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी चीज ऐसी है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर वो जब आ ही पड़ेगा इस पर फिर ही मान लाओगे? हाँ अब माना, हालांकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा, ज़ूक़ो अजाब अलखुल्द, हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का बदला ही मिला है। जुल्म से बचिए, जुल्म पलट कर करने वाले पर आता है।